ओम शांति। एक घटना जो इस यज्ञ के किसी ज्ञान में चलने वाले अनन्य भाई के साथ घटी थी, उससे इस क्लास की शुरुआत करेंगे। एक भाई मधुबन आने के लिए ट्रेन में था और शायद अहमदाबाद तक पहुंचा था, तो ट्रेन में उसे उसी की बोगी में कुछ लोग मिले और वो लोग उससे बातें करने लगे और उन लोगों ने उससे कहा जब वो भोजन कर रहे थे कि आप भी हमारे साथ थोड़ा भोजन कर लो। तो उसने कहा नहीं, हम बाहर का भोजन नहीं खाते। तो उन्होंने कहा बाहर का नहीं है, घर का ही बना हुआ है। तो उसने कहा नहीं, मैं लाया हूँ, मेरे पास है। उन्होंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर वो योग अवस्था में था, योग युक्त था। फिर उन लोगों ने कहा कम से कम ये बिस्किट तो खा लो, बिस्किट से क्या होगा। तो उसने भी सोचा, पहले तो मना किया, पर जब उन्होंने कहा मशीन मेड है, किसी ने हाथ नहीं लगाया इसको, तो उसने कहा बिस्किट से तो चलो ठीक है, बिस्किट तो खा ही सकते हैं। तो उसने बिस्किट खा लिया और फिर उसे थोड़ी सी नींद आने लगी, हल्की सी। और फिर जब उसकी आंख खुली तो वो अजमेर में था और देखा तो उसका जितना सामान था वो सब गायब था। बाबा ने बहुत सूक्ष्म धारणाएं हमें बताई है और ये जो धारणाएं हैं और ये जो मर्यादाएं हैं उसमें रक्षा है। किस प्रकार से रक्षा है शायद हमें पता नहीं, परंतु है जरूर, कुछ ना कुछ सूक्ष्म रहस्य है हर एक धारणा में, हर एक मर्यादा में, चाहे वो खान पान की हो या फिर जीवनचर्या की, रात्रिचर्या की। तो उस एक से प्रीत जुटी रहे, तब उस एक की जो बातें हैं वो याद रहेगी। सुबह मुरली में बाबा ने कहा ये बातें ही निराली है, ये बाप ही अलग है। तो उस एक से सर्व संबंध, उस एक से प्रीत, उस एक के प्रति समर्पण भाव, उस एक के प्रति निश्चय, उस एक की याद, उस एक की याद में मगन, उस एक का ही ख्याल, उस एक का ही ध्यान, उस एक का ही चिंतन। एक बाप, दूसरा न कोई। आज सुबह पांडव भवन में एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में कैसे टिके, इसकी कुछ चर्चा हुई थी। ऐसी 21 अलग अलग विधियां या पुरुषार्थ जिससे इस अवस्था में टिक सके, तो वो चर्चा हम यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। परंतु उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, एक बाप दूसरा न कोई इस वाक्य को जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इसको जीवन की किन किन परिस्थितियों में स्थितियों में प्रयोग करना है, यूज करना है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके भी पहले एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। किसी गांव में बाढ़ आ जाती है, नदी उफान पर है, सारे गांव वाले इतर बितर भागने लगते हैं। और गांव में एक पुराना सा छोटा मंदिर है और वहां एक पुजारी रहता है जो कि भगवान का भक्त है। पानी घुटनों तक आ जाता है। कुछ किसान उस पुजारी तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि चलो यहां से, क्योंकि नदी का पानी बाढ़ बढ़ रही है। तो वो कहता है, अरे ना समझ, मैं तुम जैसा नास्तिक नहीं हूं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, मैंने अपना जीवन उसको दिया है तो वो मेरी रक्षा करेगा। तो वो किसान चला जाता है। पानी और बढ़ने लगता है, बाढ़ और बढ़ने लगती है, कमर तक बांध पानी आ जाता है, सारा गांव पानी के गांव के घर सारे पानी में डूबे हुए। एक व्यक्ति नाव लेकर आता है और कहता है कि चलो पानी बढ़ रहा है। वो कहता है, अरे मूर्ख, शायद तुम जानते नहीं किससे पूछ रहे हो, मैं बचपन से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और उसे भी भेज देते हैं। पानी और बढ़ने लगता है, तब तक पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ जाता है, गले तक पानी है, और ऊपर से देखता है एक हेलीकॉप्टर आया है और हेलीकॉप्टर से किसी ने रस्सी छोड़ी है और वो कहते हैं उसको पकड़ो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वो कहता है, भगवान मेरी रक्षा करेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। और वो डूब जाता है और मर जाता है। भगवान के सामने पहुंचता है और सबसे पहली कंप्लेंट, क्या ये सिला दिया मेरी भक्ति का, मैंने तुम्हारी इतनी मनन्य भक्ति की और ये परिणाम, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। भगवान कहते, मैं तीन बार तुम्हें बचाने आया, तीन बार मैंने लोगों को भेजा तुम्हें बचाने के लिए, पर तुम ही आए नहीं। पहले ही समझा दिया था कि यहां से चले जाओ, तुम नहीं माने, फिर भी दूसरी बार और कोशिश की, नाव लेकर आया, तीसरी बार तो हेलीकॉप्टर लेकर आया, पर तुम नहीं माने। जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, कितनी ही विकट है, विकराल है, उनमें भगवान कुछ सिखा रहा है और उसकी मदद उसमें छिपी हुई है। और इतनी सूक्ष्म है वो कि वर्तमान परिस्थिति के विकराल रूप में शायद वो कहीं ढक रही है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां है, स्थितियां है, अवस्थाएं है चित्त की, मन की, जिसमें इस वाक्य को याद रखना है कि एक ही बाप और दूसरा ना कोई, बस वही है, वही सहारा है, वही दिलाराम है, वही आश्रय है, वही सहारा, वही संबल है, मदद है, बल है, भरोसा है, आखिरी आधार है। तो हम ऐसी 21 परिस्थितियों को देखेंगे कि जिसमें यदि ये याद आ जाए कि इस यही वो परिस्थिति है जिसमें मुझे बस उसी का याद, उसी की याद करनी है, उसी की याद, उसी का सहारा, उसी का प्यार, कोई मनुष्यों का नहीं। क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में जब जब मैं मनुष्यों के पास गया, दुख कम नहीं हुआ, नए दुख निर्माण हुए, अपेक्षाएं निर्माण हुई और दुख बढ़ा। सुबह हमने चर्चा की थी ऐसी 21 विधियां कि कैसे इसमें स्थित हो जाए। अभी हम चर्चा करेंगे वो परिस्थितियां कहां कहां मन में आ जाए और जिसकी पहले से प्रैक्टिस हो और जिसका पहले से अभ्यास हो हमको, किस परिस्थिति में मुझे एक को ही याद करना है। सबसे पहली अलोन अर्थात अकेलापन इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कभी कभी अकेलापन सा आ जाता है। सबके बीच में है, सब आसपास है और सब अपने भी है, उसके बावजूद भी कभी कभी अलोननेस, लोनलीनेस, एकांगीपन, और वो इतना गहरा होता है कि उदासी का रूप भी धारण कर सकता है, जहां ऐसे लगने लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी किसी को परवाह ही नहीं है, हमें इतना कुछ हो गया और किसी ने कुछ पूछा तक नहीं, हम इतना सेवा करते हैं और हमारी कोई कद्र नहीं। ये सारे विचार लोनलीनेस को लाते हैं, अलोननेस को लाते हैं, एकांगीपन को लाते हैं। ये वो मोमेंट है कि जिसमें हम मनुष्यों का सहारा लेना चाहते हैं, देहधारी को मित्र बनाना चाहते हैं, कोई मित्र, कोई साथी, कोई सहेली, कोई फ्रेंड मिल जाए तो उसके साथ जी बहलता है, परंतु दुख कम नहीं होता, दुख की विस्मृति होती है। दो चीजें हैं याद रखनी है हमेशा, एक है दुख का निवारण और दूसरा है दुख की विस्मृति। जैसे संसार में भी ड्रग्स लेते हैं, दारू, सिगरेट, बीड़ी, ये दुख का निवारण नहीं करता है परंतु कुछ समय के लिए दुख की विस्मृति जरूर कर देता है। कोई व्यक्ति एकदम हर्ट हुआ है, आहत हुआ है, वो बहुत पी लेता है और पीकर वो अपने गम को भूल जाता है, पर जब नशा उतरता है फिर से याद आता है, तो ये जो था वो थी दुख की विस्मृति, दुख का निवारण नहीं, दुख से मुक्ति नहीं। और जब भी हम किसी देहधारी का साथ लेते हैं तो वो भी एक रीति से दुख से मुक्ति नहीं परंतु विस्मृति जरूर होती है, परंतु यदि उस व्यक्ति जिसका सहारा लिया उसी में मोह हो जाए और उसी में आसक्ति हो जाए तो नए विकार और नए विकर्म खड़े होंगे। और एक बात, आत्मा का अकेलापन, परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं भर सकता। इस वाक्य को अपनी मन की डायरी में नोट करके रखना है, आत्मा का अकेलापन परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी देहधारी कभी नहीं भर सकता, ना ही कोई स्थान भर सकता है, ना कोई आकर्षण भर सकता है, ना कोई प्रलोभन, ना कोई वस्तु, ना कोई पद, ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, ना कोई वैभव, ना इस संसारिक कोई प्राप्ति। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है, और जब जब आत्मा देह के द्वारा उस प्यास को बुझाने का प्रयत्न करेगी, प्यास तो नहीं बुझेगी परंतु विकार जरूर उत्पन्न होंगे, क्योंकि देह विकार की भाषा समझता है जब उस पर आत्मा का शासन नहीं होता। तो सबसे पहली अवस्था जिससे स्वयं को गिरने से बचाना है, वो जब जब अकेलापन आए जीवन के इस पथ पर चलते हुए, स्वयं को याद दिलाना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा मैं, तीसरा ना कोई, और तीसरा आते ही तीसरा नेत्र बंद होता है और फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर विक्षिप्त हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है, विनाश काले विक्षिप्त बुद्धि हो जाता है वो। तो सबसे पहले ए फॉर अलोननेस, दूसरा बी फॉर बोर्डम, जब बोर हो जाओ। क्या ब्राह्मण आत्मा भी बोर होती है? पहला तो यह प्रश्न है, होती है क्या? वही अमृत वेला, वही मुरली, और वही सेवा, और वही नाश्ता, और वही ट्रैफिक कंट्रोल, और वही परिवार, और वही सब कुछ, बोर होते या नहीं होते, या हर दिन नया लागे, हर दिन नवीनता, हर दिन नयापन, हर दिन नवीनता यदि चाहिए तो हर दिन नया ज्ञान का चिंतन होना चाहिए, हर दिन नवीनता चाहिए तो हर दिन नए योग के प्रयोग होने चाहिए, हर दिन नवीनता चाहिए, हर दिन नए अवस्था, नई स्थिति, नए अवस्थाएं, नया दृष्टिकोण, नई वृत्ति, नए स्वप्न, नई कल्पनाएं, नई चलन, सब कुछ नया होना चाहिए, तो बोर्डम नहीं आएगा। नहीं तो एक ही एक चीज व्यक्ति उसी ढर्रे से, उसी रीति से कर रहा है और लंबे समय तक कर रहा है, वही उठना, वही जाना, वही करना, स्वतः बोर हो जाता है। तो जब बोर हो जाओ तब क्या करो, तब सबसे ज्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति साथियों को ढूंढता है जो उसके इस बोरियत को, बोर्डम को खत्म करे, और तब वो साथियों में फंसता है, और तब वो भोजन में फंसता है, और तब वो घूमने फिरने में फंसता है, और वो तब चीप एंटरटेनमेंट में फंसता है, और तब वो डिजिटल माया में फंसता है, क्योंकि मन रिक्त है, मन बोर हो गया, उब गया है वही वही चीजें कर कर। बोर होने का कारण है चिंतन की कमी, बोर होने का कारण है नवीनता की कमी, बोर होने का कारण है रचनात्मकता की कमी, बोर होने का कारण है स्वयं की चेकिंग में कमी है। इसके लिए जब ऐसी स्थिति आ जाए कि लगे बोर हो रहा है, तो फटाफट स्वयं को संवारना, बिखरने नहीं देना चित्त को, क्योंकि एक बार बिखर गया वो बोर्डम तो रहेगा ही, पर साथ में नए बंधन उत्पन्न हो जाएंगे। आज सुबह बंधन के लिए क्या कहा बाबा ने, क्या है बंधन, दुखदाई है, और क्या है वरदान में क्या कहा, टाइट कपड़े, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, आना और जाना, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या, अभी अभी अशरीर, अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, यही पुरुषार्थ है, आना और जाना। तो बंधन बांधते हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं, इस वाक्य को घोट के रख देना है, स्वयं के मन को बताना है, हे मन सुन, क्यों तू बंधन में बंध रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं आत्मा, कि मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, किसी का भी, मैं निर्लिप्त हूं, अलिप्त हूं, स्वतंत्र हूं, परतंत्र की बेड़ियां मुझे बांध नहीं सकती। तो जब भी बोर्डम आए, चिंतन को बढ़ाओ, नई नई क्लासेस सुनो, नई नई किताबें पढ़ो ज्ञान की, नए नए प्रयोग करो योग के, कुछ तीव्र पुरुषार्थियों के संगठन यहां वहां बने हुए हैं, उनके बीच में जाकर बैठो, तो उनकी ऊर्जा, संगठित ऊर्जा आत्मा में बल भरेगी और आत्मा फिर से ऊपर उठेगी। नहीं तो चारों ओर व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है, परचिंतन और परदर्शन भरा हुआ है, कैसे बचाओगे अपने आप को? ज्ञान योग यही एकमात्र मार्ग है, चिंतन मनन अध्ययन। तीसरा सी, सी फॉर केओस, केओस अर्थात सब कुछ हलचल और गड़बड़ चल रहा है जीवन में, सब अस्त व्यस्त चल रहा है, जीवन ही बिखर गया है, कुछ भी ठीक ठीक से नहीं चल रहा है, अट्टर केओस, डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। जब ऐसी स्थिति आई तब बहुत ज्यादा संभावना होती है कि हम किसी को सहारा बना ले, किसी को अपनी बैसाखी बना ले। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात कोई भी बैसाखी नहीं, कोई देहधारी सहारा नहीं, आधार नहीं, किसी का कंधा नहीं चाहिए रखकर रोने के लिए, और ना ही किसी देहधारी के लिए हम रोएंगे। हमारे आंसू बहुत कीमती है, केवल परमात्मा प्रेम में ही वो बहेंगे। इन आंसुओं को आज्ञा नहीं है किसी देहधारी के लिए बहे। अनमोल है, कीमती है। तो जब जीवन में ऐसी हलचल हो और ऐसी गड़बड़ हो तो कहां जाना चाहिए? वो जो स्थिरता का सागर है, वो जो अडोलता का सागर है, वो जो अकंप है। दुनिया में चहुओर भूकंप ही भूकंप है, चाहे धरती या मन। उस मन के पास क्यों जाए जो स्वयं कप रहा है परिस्थितियों में, विषयों में। हमें जाना है उसके पास जो अडोल है, जो एक बाप दूसरा ना कोई, जो जब हलचल की परिस्थिति है जीवन में तब योग को बढ़ाना है, बजाय इसके कि पकड़ पकड़ के लोगों को ये पूछे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, इस परिस्थिति में क्या करे उस परिस्थिति में क्या करे। घर वाले ऐसा करते, यहां वाले ऐसा करते, इसने ये कहा उसने वो किया, ये सब होगा। भगवान ने पहले ही कह के रख दिया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सारी हलचल होगी पर तुम्हें अडोल रहना है। तो जब हलचल की परिस्थिति हो तब इस भाव को और प्रगाढ़ करना है कि मैं केवल एक बाबा से ही सहारा लूंगा, एक वही मेरा आधार है, उसी के साथ चलूंगा, उसी को अपना सर्वस्व मानूंगा, उसी के लिए सब कुछ हो। परिस्थितियों में हमने देखा है जब व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति आती है सबसे पहला काम वो करता है अमृत वेला छोड़ देता है, दूसरा काम करता है मुरली क्लास इररेगुलर कर देता है, तीसरा काम चिंतन एकदम छोड़ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो करता है वो है लोगों को ढूंढता है और डिस्कशन करता है अपनी समस्या का कि यह परिस्थिति है क्या करना चाहिए। परिस्थिति का उत्तर निराकारी अवस्था में मिलेगा, ना ही चर्चा से। जितनी चेतना निराकार होती जाएगी एकाग्र होगी, और एकाग्रता के उस एक क्षण में, किसी एक क्षण में उत्तर प्रकट होगा, ना कि सारे दिन भर चर्चा करने से, फोन पर बात करने से, लोगों को SMS ईमेल करने से। उत्तर अंतर्निहित है। तो हलचल की हर परिस्थिति में योग को बढ़ा देना है। उसके बाद में डी, डिस्टर्ब्ड। जब सब डिस्टर्ब हो जाओ, उस टाइम में भी सबसे ज्यादा काम यही किया जाता है, योग और ज्ञान का चार्ट कम हो जाता है। और जो परिस्थिति आई है उस परिस्थितियों के विषय में सोचते, जैसे कोई एक भाई है उसके सामने परिस्थिति आई तो वो परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर उसकी सारी ऊर्जा उस परिस्थिति को जा रही है और ना कुछ कर पा रहा है वो, उसके लिए खाली सोच रहा है, इसने ये कहा उसने वो कहा, ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ, ऐसा हो सकता है, अनुमान लगा रहा है बैठे बैठे। ये न करे, अगर ये न करते हुए बाबा से योग जोड़ ले, सोचे कि ये समय है, रोज 3:30 बजे उठता हूं, आज 3 बजे, कल 3 बजे उठूंगा, परिस्थिति है ना, तो योग को बढ़ाना है। परिस्थिति है रोज 2 बार मुरली पढ़ता हूं, आज 5 बार पढ़ूंगा, शायद मेरी परिस्थिति का उत्तर आज ही की मुरली में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। खुदा तो खुदा है, जादूगरी करता है, आज सुबह बोला है, कोई ना कोई जादू तो हो ही जाएगा, पर वो छिपा है जादू। उसने भेजी है मुरली, उसने भेजा है सबसे पहले वो व्यक्ति जिसने कहा कि यहां से वहां जाओ, दूसरी बार उसने भेजा है वो नाव लेकर व्यक्ति जिसने कहा आओ जाओ नाव में बैठो, तीसरी बार उसने वो हेलीकॉप्टर भेजा, और हम कह रहे हैं कि मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। अरे सहारा आया है, भगवान का ही भेजा हुआ, पर वो छिपा है मुरली में। बाप नई नई पॉइंट्स तुमको समझाते आज सुबह की साकार मुरली, समझनी है और समझानी है दूसरों को। जो बच्चे कहते हैं हम समझे तो है पर समझा नहीं सकते परसों की मुरली, बाप कहते हैं समझे ही नहीं है। तो जब डिस्टर्ब हो जाओ, वैसे तो होना नहीं चाहिए सबसे पहली बात, पर यदि हो जाओ तो रिकवरी पीरियड कितना है, बहुत फास्ट होना चाहिए। कितना जल्दी, 1 घंटे में निकल जाते हो डिस्टर्बेंस से बाहर, या 4 घंटे लगते हैं, या पूरा दिन लग जाता है, या फिर दूसरा दिन अमृत वेला होने के बाद ही थोड़ा ठीक लगता है, या तो फिर कितने अमृत वेले चले गए और मुरलियां चली गई पर डिस्टर्बेंस जारी है, उभर ही नहीं पाए उससे। ऐसी भी आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, उदास दुखी। तो जब डिस्टर्बेंस हो तुरंत बैठना है और योग की प्लानिंग बनानी है, तुरंत चिंतन की प्लानिंग बनानी है, तुरंत एकांत की प्लानिंग बनानी है, मौन की प्लानिंग बनानी है, बजाय इसके कि इधर उधर जाऊं और इधर उधर बात करूं और बेचैन रहूं और इधर उधर फोन लगाऊं, उससे कुछ नहीं होगा। स्थिर कर दो मन को, मौन में उत्तर आएगा। उसके बाद ई, एग्जॉस्टेड अर्थात थकान। इतनी सेवा इतनी सेवा, शरीर भी थक गया या तो मन थक गया, वही वही करके जब ऐसी अवस्था आती है तब भी व्यक्ति किसी देहधारी को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब देहधारी को पकड़ता है तब माया चालू हो जाती है। वो थकान तो रहती है, हाँ अल्पकाल के लिए मिट भी जाएगी परंतु पूरी नहीं जाएगी, नए बंधनों को निर्माण करेगी। तो थकान में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो सो जाओ जाकर, कम से कम विकर्म तो नहीं होंगे, बंधन तो नहीं क्रिएट होंगे। दूसरा चिंतन, जिनको लिखने की आदत है वो लिखना चालू कर लिखे, और जिनको नहीं है वो निर्माण करे, रोज मुरलियों से टॉपिक निकालने। बाप का पेट किससे भरता है, टॉपिक है, अच्छा है आज की मुरली से, ये टॉपिक निकालने हैं। और रारे दिन भर चिंतन करना है, जब सेवा कर रहे हैं, किचन में है, कहीं पर भी है, मन में चिंतन चालू रहे। दुनिया वालों का ना तो पेट भरता है और ना ही पेटी, बाप का भी पेट नहीं भरता। तुम खाली खुश खैराफात की बातें और याद प्यार सुनाओगे तो मेरा पेट नहीं भरता, बताओ सेवा समाचार तो पेट भरेगा। तो कितना सुंदर टॉपिक है, बाप का पेट किस किस से भरता है, ये तो मुरली में आया, चिंतन विस्तार करना है उसका, और किससे और किससे और किससे। ज्ञान में विस्तार है, योग में विस्तार को सार में लाना है, ज्ञान अर्थात सार का विस्तार और योग अर्थात विस्तार का सार, ये काम करना है रोज। तो जो थकान आ जाती है वो मिट जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेवा मनुष्य को व्यक्ति को कभी नहीं थकाती है, सेवा तो बहुत होने दो थकता नहीं है। सेंटरों पर देखेंगे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो कुमार और कुमारियां दिन रात बहने भाई काम करते, थकते हैं क्या, 2 घंटा सोते फिर भी नहीं थकते। थकान का संबंध शरीर से नहीं ना ही सेवा से, थकान का संबंध संकल्प से है। जितने ज्यादा व्यर्थ संकल्प सेवा करते समय उतनी ज्यादा थकान, जितनी खुशी कोई थकान नहीं, आनंदित झूमते रहेंगे खुशी में सेवा करते रहेंगे। तो संकल्प तो एग्जॉस्टेड, उसके बाद में एफ अर्थात फियर, जब भयभीत हो जाओ, डर लग रहा है, अज्ञात भय है, किससे भय है क्या भय है क्लियर नहीं है पर भय जरूर है, ऐसी अवस्था में बाबा का आह्वान करना जो निर्भय निर्वैर, कि ये जो भय है क्यों है, क्यों मैं भयभीत हो रहा हूं, कौन मुझे भयभीत कर रहा है। भय बहुत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म की दिखाई नहीं देते, पर उसका सामना करना है, सामने आते ही वो नष्ट हो जाएगा। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, एक स्त्री है जिसको रात में रोज स्वप्न देखती है, वो अंधेरी रात का घना जंगल और एक परछाई भूत की तरह उसका पीछा कर रही है और भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और जब भी उठती है धड़कन बड़ी हुई है, क्योंकि एक ही स्वप्न रोज दिखता है कि अंधेरी रात, घना जंगल, और वो भाग रही है और पीछे एक बड़ी सी छाया बहुत ऊंची उसके ऊपर, और वो भाग रही है और उठती है, और उसके बाद में उसको पता नहीं चलता है वो कौन था, बस डरी हुई सी। एक दिन ऐसा होता है कि स्वप्न थोड़ा आगे चढ़ जाता है, उठती नहीं है वो, स्वप्न आगे बढ़ जाता है और वो भाग रही है, भाग रही है, नीचे गिर जाती है पीठ के बल, क्योंकि सामने खाई, और वो छाया जो होती है भूत जैसी छाया उसके ऊपर आ जाती है। वो महिला पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मुझे क्या पता, ये तुम्हारा स्वप्न है, मुझे क्या पता, मैं स्वप्न तुम्हारा है, सब कल्पनाएं है, आधे से ज्यादा भय जो है वो इमेजिनरी है, कल्पना से निर्मित हुए है। तो ऐसे सारे भयों को, एक कल्पना को दूसरे कल्पना से काटना है। एक व्यक्ति है जिसको हमेशा, उदाहरण आपने सुना होगा, कई बार दिया हुआ है, वो दारू बहुत पीता है और दारू पीते उसको सब जगह सांप दिखने लगते हैं, और इतना भयभीत है वो, सबसे कहता है मैं क्या करूं, मुझे बचाओ सांपों से। लोग कहते हैं अरे वो झूठे हैं, पर वो मानने को थोड़ी ना तैयार, उसको दिखते हैं सांप। और एक दिन उसने एक पिंजड़ा लिया जिसमें नेवला लिया, और नेवला लेकर चलता है पिंजड़े में, तो सबने कहा इस पिंजड़े में क्या है, तो उसने कहा नेवला है। नेवला क्यों? उसने कहा जो सांप दिखते हैं ना, ये नेवला उनको खाएगा। तो लोग कहते हैं अरे वो सारे सांप झूठे हैं, वो कहता है ये नेवला भी झूठा है। एक भय को खत्म करने के लिए दूसरा, एक कल्पना को खत्म करने के लिए दूसरी कल्पना निर्माण की। तो इमेजिनेशन, भय से मुक्ति का एक मार्ग है बाबा को छत्र छाया समझना, एक ही को छत्र छाया, एक ही का सहारा, एक ही का आधार, वो ही रक्षा करेगा और कोई नहीं, ये भाव। तो एफ, उसके बाद है जी। जी अर्थात गिल्ट कॉन्शियसनेस, गिल्ट कॉन्शियसनेस अर्थात अपराध भाव, मेरे से पाप हो गया, मेरे से विकर्म हो गया, नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, और यह भाव इतना प्रगाढ़ है, और हो सकता है वो पाप छोटा है या बड़ा उसकी बात नहीं है, परंतु अब जो पश्चाताप का भाव है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है आत्मा को। इससे भी मुक्ति का मार्ग है एक उसी का सहारा लेना, बाबा को सच सच सुना देना, जो है ये हुआ बस, किसी देहधारी को नहीं सुनाया चलेगा, शायद वो नहीं समझ पाएंगे हमको अगर लगता है ऐसा, पर बाबा को कुछ भी, उससे तो कुछ नहीं छिपाना है। सर्जन से बीमारी छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, नासूर होगा घाव, लिख के देने से भी नहीं, रोज अच्छे से सुना तो एक बार पूरा कि ये है, और इस अपराध भाव से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक वो गिल्ट कॉन्शियसनेस है आगे पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा, जो हो गया वो हो गया। महात्मा गांधी के जीवन कहानी में आता है कि उन्होंने अपने पिताजी को एक बार वो सब बातें लिख के दे दी, उनको लगा कि ये बातें अगर मेरे पिताजी को पता चल जाए, वैष्णव घर में जन्म लिया, मैंने मांस खाया, मैंने चोरी की, पर उनको लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, हिम्मत नहीं थी, तो खत पर लिख के दिया, खत लिखा अपने पिताजी के पास दे दिया, पिताजी ने बुलाया और उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनको खुशी थी कि इसने सच बोला, लिख के दे दो या फिर सच्ची दिल से सुना दो उसको, और फिर दृढ़ संकल्प करो कि यह फिर से नहीं होगा। गिल्ट से मुक्त का मार्ग है एक पाप दूसरा ना कोई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हार्ट ब्रोकन, दिल शिकस्त। जब दिल शिकस्त हो जाए तब व्यक्ति भी सहारा ढूंढता है, एक दिलाराम ही है जो दिल शिकस्त हृदय को सहारा दे, दिल शिकस्त चित्त का आधार बने, ना ही कोई देहधारी। और जब जब इस तरह से उदासी आ जाए उससे बात करो, बाबा ने अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किया कि उदासी आ जाए तो क्या करो, कुटिया में आ जाओ, बाप से रूरियान करो, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन टॉक, बात करना उससे, अपने योग के टाइम को बढ़ाना, योग के टाइम में भी बाबा से बातें करने का जो टाइम है उसको बढ़ाना, बातें करने का टाइम, एक होता है योग, पर एक होता है बातें करना, वो जो बातें करने का अवधि है उसको बढ़ाना, 1 घंटा केवल बात ही करेंगे एक्स्ट्रा, वो दोपहर को निकाला हमने टाइम, जिसमें हम योग भी कुछ नहीं कर रहे, ना मैं आत्मा हूं वो परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं, केवल उसको हम सुना रहे हैं, मन की स्थिति, मन की स्थिति क्या है, ये है, इतना कहने मात्र से हल्का बनाएगा यहां पर। तो हार्ट ब्रोकन, एच के बाद आए, आए अर्थात इनजस्टिस, जब लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यह वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, यह तो अन्याय है, उसी के पास चले जाना, उसके घर में कभी भी कोई अन्याय नहीं है, और ड्रामा न्यायकारी है, यह बात हमेशा याद रखना। हमको छोटी दृष्टि से लग रहा है ये अन्याय हो रहा है, ऐसा पक्षपात हो रहा है, पार्शियलिटी हो रहा है, इनको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, किसी को सब मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, यह ऐसा अन्याय है, ड्रामा न्यायकारी है, संपूर्ण न्यायकारी, और भगवान का घर भी न्याय से भरा हुआ है, वो न्यायाधीश है, उसी के पास जाना। ऐसी इनजस्टिस की अवस्था में अगर हमको लगे देहधारियों का आधार ले, तो दुख और बढ़ेगा, बंधन और बढ़ेंगे, दुख नहीं मिटेगा। विस्मृति हो सकती है थोड़ी देर के लिए, राहत मिलेगी किसी को सुनाकर, पर मुक्ति नहीं। तो आए, आए के बाद जे, जे अर्थात जेल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। यदि हम इस तरह माया के वश में हो गए हैं, इस जेल में जैसे फंसे हुए, सारा पुरुषार्थ कर लिया पर निकल नहीं पा रहे उस बंधन से, सब कर लिया, तब जैसे भगत होता है ना, अंत में शरण जाता है भगवान की कि मैं सरेंडर करता हूं अभी, फाइनली सब प्रयत्न कर लिए, वैसे यदि एक ऐसा कोई विकार है, देहभान का कोई बात है, सब करने के बाद नहीं निकल रही है, तो अभी अंत में ऐसी एक पुकार हृदय से निकलनी चाहिए कि बाबा तू ही है, बस तू मुझसे, मुझे इससे छुड़ा, जब तक नहीं छुड़ाओगे मैं जाऊंगा नहीं। कहां से नहीं जाऊंगा? बाबा के कमरे से। पर दूसरों को भी बैठने का चांस देना, पर जिद करना बाबा के साथ, ये बहुत अच्छी जीत है। जब तक तुम मुझे इससे नहीं छुड़ाते मैं जाऊंगी नहीं, कितनी अच्छी जिद है, मैं जाऊंगा नहीं। तो जिद करना, उसके बाद के अर्थात नॉक्स और या किक्स ऑफ लाइफ। जीवन में बहुत ठोकरे लगती है, बहुत ठोकरे, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स से डिग्री लेनी पड़ती है हर एक को, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, ठोकरों की विश्वविद्यालय से डिग्री लेनी पड़ती है, तहीं जाके व्यक्ति परिपक्व बनता है, बिना उसके नहीं। अकल किससे आती है, बादाम खाने से या ठोकर? बादाम से भी आती होगी, या आती है वो भी खाना, पर साथ में ठोकरे तो क्या आपको मांगने की जरूरत नहीं, जीवन जिंदगी खुद ही ठोकरे खिलाएगी, और जितनी ज्यादा ठोकरे जिसने खाई है वो उतना परिपक्व और शक्तिशाली, जिसने कम ठोकरे खाई है वो कम शक्तिशाली। पर ठोकरों का आह्वान भी मत करना अपने आप ही आएगी, तो उसको अवसर बना देना आगे बढ़ने का। तो जब ऐसी ठोकरे खाए, नॉक्स ऑफ किक्स ऑफ लाइफ, तब एक उसके पास चले जाना, वो गोद में ले लेगा और सुरक्षा करेगा। उसके बाद के बाद एल, एल अर्थात लॉस्ट। जब भटक जाओ ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण बने थे किस लक्ष्य से और अभी कहां पहुंच गए, बने थे तपस्या करने के लक्ष्य से अभी व्यर्थ में, बने थे महान योगी बनने के लक्ष्य अभी भोग विलास में डूबे हैं, बने थे बाबा का नाम रोशन करने के लिए अभी पता नहीं किस संघ में है कि जहां ज्ञान योग की कोई चर्चा ही नहीं है उनके बीच। सोचा था चिंतन, महान चिंतक महान तपस्वी बनेंगे और अभी व्यर्थ चिंतन चल रहा है। सोचा था यज्ञ की रक्षा करेंगे, अभी खुद की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। लॉस्ट हो गए, अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि मैं खो गया हूं, मुझे अपने आप को ढूंढना है, संवारना है और वहां लाना है जहां से मैंने यह जीवन चालू किया था, जो जिस लक्ष्य से। आज की मुरली में बाप भी वंडरफुल, एम ऑब्जेक्ट भी वंडरफुल, वंडर है ना। क्या एम ऑब्जेक्ट है? उसके बाद एम, एम अर्थात मिसफॉर्च्यून, अर्थात दुर्भाग्य, अर्थात कोई देवाला निकल गया, अर्थात कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में, घाटा हो गया बिजनेस में, या और कुछ, घर में चोरी, या इस तरह की कोई भी मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य आ गया अचानक, अकस्मात। उस टाइम पर स्थिर रहना और उसकी याद में रह जाना, यही योग है, यही योग का प्रयोग है। तभी तो पता चलेगा कि कितने योगी है, तभी तो पता चलेगा इतने सालों से मुरलियां जो सुन रहे उसका क्या परिणाम है, तभी तो पता चलेगा इतनी जो डायरिया भर दी वो डायरी में भर रहा या इधर भी गया कुछ, या डायरी में ही कबर्ड में बंद है सारा ज्ञान। तो मिसफॉर्च्यून के समय एक को याद करना। उसके बाद में एन फॉर नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, छोटी मोटी या बड़ी भी, उस टाइम पर स्थिरता, हलचल में नहीं आना, स्थिरता। और कभी भी आ सकती है, एनी टाइम। उसके बाद ओ अर्थात अपोजिशन, जब सब अचानक विरोधी हो जाए, जो मित्र थे शत्रु बन जाए, अब तक जो साथी थे, साथ दे रहे थे, मदद कर रहे थे, अब एकदम ही शत्रु की निगाह से देखते हैं। इस टाइम में भी बजाय इसको कि उनको खुश करे या और कुछ मार्ग ढूंढे या उनके दूसरे दुश्मनों के साथ दोस्ती करे, एक का सहारा लेना, एक का आधार लेना, एक बाप दूसरा ना कोई। उसके बाद में पी, पी फॉर परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड अर्थात कंफ्यूज्ड, मूंझ गए जीवन में, समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊं कि उधर जाऊं, यहां रहूं या वहां रहूं, सेंटर में रहूं या घर पे रहूं, जॉब करूं या जॉब छोड़ू, ये डिपार्टमेंट में रहूं या डिपार्टमेंट ही चेंज कर दूं। कंफ्यूजन है हर चीज में, हर चीज में कंफ्यूजन। ऐसा जब कंफ्यूजन है, मनुष्यों के पास जाओगे तो और कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि 100 लोग 100 राय देंगे। जो उत्तर आएगा प्लेन बुद्धि की अवस्था में आएगा, स्थिर बुद्धि होकर बैठ जाओ। ऐसी जब कंफ्यूजन हो तो बेस्ट है सीधा 2 बजे वाला योग, पिन ड्रॉप साइलेंस, जहां पर है बाबा के सामने बैठकर उत्तर आएगा, वहां पर भगवान बताएगा तुमको करना क्या है। तुमने जीवन भगवान को दिया है, मनुष्य को नहीं, उसकी जिम्मेवारी योगक्षेमम वहाम्यम, वो वहन करेगा वो जिम्मेदारी। उसके बाद में क्यू, क्यू अर्थात क्विटिंग एडिक्शन और संस्कार। जब हम किसी एक ऐसे संस्कार का छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, या किसी संस्कार या फिर लत जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं छूट रही है, जैसे पहले भी बताया, पर यह बात है अब संस्कारों की, वो विकार की थी, संस्कार एक बन गया है, हैबिट बन गई है, और उससे ऐसा नहीं कि हमने प्रयत्न नहीं किया, सब कुछ किया पर उसके बाद में भी वो ठहरा हुआ है, हर तरह से प्रयत्न किया, अब समय है उसके ऊपर सौंप देने का कि एक तू ही बता क्या करूं, एक तू ही कर सकता है ये। तब निश्चय की परीक्षा है, अपने निश्चय को बढ़ाना है। उसके बाद है आर, रिजेक्शन, जब दुनिया की तरफ से रिजेक्शन हो जाए। सोचो कोई इंटरव्यू के लिए जाता है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, वहां रिजेक्ट हो जाता है, दुख होता है। यह तो हो गया इंटरव्यू, वैसे किसी व्यक्ति द्वारा रिजेक्शन, किसी डिपार्टमेंट द्वारा रिजेक्शन, हमने कहीं अप्लाई किया रिजेक्ट हो गए, या फिर इससे भी सूक्ष्म मन के तल पर किसी व्यक्ति ने हमको इमोशनली रिजेक्ट कर दिया, साथी ने, सीनियर ने, तो दुख होता है। परंतु इस रिजेक्शन की अवस्था में भी फिर से वही प्रिंसिपल, एक बाप दूसरा ना कोई। उसके बाद में एस, एस अर्थात सिकनेस, बीमारी। बीमारी के समय एक दो चीजें याद रखनी है, अपनी बीमारी को बहुत बड़ा चढ़ाकर विस्तार कर वर्णन नहीं करना है। एक, अपनी बीमारी के बारे में दिन रात सोचते नहीं रहना है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। हम देखते हैं दिन रात चिंतन वही चलते रहता है, बाबा ज्ञान सब छूट गया, बीमारी क्या आ गई छोटी सी। तो बीमारी जब आए, सिकनेस, तब तो याद और ज्यादा बढ़ानी होती है, योग का टाइम और ज्यादा बढ़ाना होता है। छोटी सी बीमारी, सर्दी खांसी भी याद के चार्ट को कम कर देती है, ये देखा है हमने। अमृत वेला ही छूट जाता है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही है, छोटा सा थोड़ा सा दर्द है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, पर वो दर्द रहा तो संकल्प आता है कि आज घर रूम पर ही बैठ के अमृत वेला करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, और क्वालिटी कम हुई और विश्व को वंचित कर दिया सकाश से। उसके बाद में टी, टी अर्थात टॉलरेट, टॉलरेटिंग, जब हम बहुत सहन कर रहे हैं, कोई परिस्थिति है और हम सहन किए जा रहे हैं, कितना सहन करें मन में विचार आता है, इसकी कोई लिमिट। महाराष्ट्र के एक संत है ज्ञानेश्वर, वो छोटे थे, भिक्षा मांगने गए और वहां पर बहुतों ने उनकी निंदा की और उनका जो झोला था वो लिया और उसको फाड़ दिया और धूल में मिला दिया। वो वापस आते हैं रोते हुए, मां पूछती है क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बोलते, मां देखती है और समझती है कि ऐसा हुआ। वो पूछता है दुख तरी कितनी सहन करा, वह व्यक्ति ने दुख कितना सहन करना चाहिए। उसकी मां बहुत सुंदर उत्तर देती है, वो कहती है समाधाना ने दुख सहन करने ही सुद्धा एक तपश्चर्या चाहे, समाधान से संतुष्टता से किसी दुख को सहन करना यह भी एक तपस्या है। तो जब जीवन में सहन करना पड़ता है तब बाप को सहारा बना लो। मुरली के महावाक्य है बच्चे तुम्हें सहन करना है क्योंकि यह बाप का आदेश है, इसलिए तुम्हें सहन करना है। और लास्ट पॉइंट, अनकंफर्टेबल, जब बहुत अनकंफर्टेबल हो, असुविधा हो, कमरा ठीक नहीं, कमरे के लोग ठीक नहीं, तब एक बाप को सहारा बना लो, उसको आह्वान करो, तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये सारी कुछ परिस्थितियां गिनाई 21, कि इन परिस्थितियों में, इन जैसी और बहुत सी परिस्थितियां और भी है, पर इन सभी परिस्थितियों में जो किसी में ना किसी रूप से छोटी मोटी थोड़ी बहुत निगेटिव है, इनको हमें पॉजिटिव बनाना है याद से, तपस्या से, लगन से, तभी हम अचल अडोल रह पाएंगे। ओम शांति।